ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कर ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढ़ोतरी किए बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी 37,500 रुपये कम हो गई है और इसका मध्यम वर्ग को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था में मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों को इससे 17,500 रुपये तक की राहत मिलेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज कराया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत की है। डॉ मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ से इस बारे में सभी संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। खेल मंत्री ने कहा कि विनेश 50 किलो के फाइनल में पहुंची थी और उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने बताया कि भारतीय कुश्ती संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि निराशा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन है और भारत का गौरव है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गृहमंत्री ने कहा कि विनेश इससे उबरकर फिर से विजेता बनकर वापसी करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना किसानों का लगभग 95% से अधिक बकाया पिछले महीने तक चुकाया जा चुका है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बामभानिया ने लोकसभा में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने 10,000 रेल इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के चौथे संस्करण को स्वीकृति दे दी है। कवच स्वचालित रूप से रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक लगा सकेगा। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने कवच लगाने की प्रक्रिया अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कवच को 1,465 किलोमीटर रेल मार्गों और दक्षिण मध्य रेलवे पर 144 रेल इंजनों पर स्थापित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की रिक्त 12 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 और 27 अगस्त है। चुनाव 3 सितंबर को होगा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने सभी भारतीय नागरिकों को पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उच्चायोग ने कहा है कि भारतीय नागरिक अनावश्यक कहीं आने जाने से बचें और घरों में ही रहें। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए उच्चायोग ने कई 24 घंटे काम करने वाले टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। कोलंबो में श्रीलंका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 249 रन का लक्ष्य दिया है। श्रृंखला में श्रीलंका 1-0 से आगे है। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने 7वां स्थान हासिल करने के बाद रिपेशाज ग्राउंड में प्रवेश कर लिया है। कल दोपहर रिपेशाज ग्राउंड में वो अपनी चुनौती पेश करेंगी। भारोत्तोलन में रात 11 बजे 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू अपनी चुनौती पेश करेंगी। 3,000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल मुकाबले में अविनाश साबले आज देर रात दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।